وكفاه. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. پچھلے چند دنوں سے اصلاح نفس پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور اصلاح نفس کے حوالے سے مشائخ کا یہ قول ہم نے بار بار نقل کیا کہ مشائخ نے فرمایا، من عرف نفسه عرف ربه، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، جس نے اپنے باطنی امراض کو پہچان لیا، اس نے اللہ کو پہچان لیا. باطنی امراض میں سے شہوت کے مرض پہ گفتگو پچھلی 3-4 مجالس سے ہو رہی ہے. اس سے پہلے ہم نے تکبر پہ، دنیا کی حرص پہ اور غصے پہ گفتگو کی، تو یہ 3 باطنی مرض پہ گفتگو مکمل ہو چکی اور شہوت سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی. شہوت سے متعلق ہم نے یہ عرض کیا کہ شہوت کا تقاضا ہر انسان کے اندر فطری طور پہ اللہ نے ڈال دیا، جس طرح بھوک پیاس کا تقاضا ہے، سانس لینے کا تقاضا ہے، نیند کا تقاضا اللہ نے انسان کے اندر ڈال دیا، اسی طرح یہ شہوت کا تقاضا ہے. جس طرح بھوک پیاس کے معاملے میں اللہ نے فرمایا کہ حلال رزق کو استعمال کرنا ہے، اسی طرح اس شہوت کو تقاضے کو پورا کرنے کے لیے بھی اللہ نے حلال رزق، حلال طریقے سے اس شہوت کو پورا کرنے کا حکم دیا کہ انسان نکاح کرے اور اپنی یہ شہوت جو ہے وہ اپنی ہی بیوی یا عورت اپنے شوہر سے پورا کرے. اس شہوت سے متعلق ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ اس مرض کو مرض اس وقت کہا جاتا ہے جب یہ شہوت انسان حرام طریقوں سے پورا کرتا ہے، اور شہوت کو حرام طریقے سے پورا کرنے کا مطلب یہ کہ انسان زنا کرتا ہے، اور زنا اتنا بڑا گناہ کہ اللہ نے اس کے قریب آنے سے بھی منع فرمایا. تو 4 اصول بتائے گئے شہوت سے بچنے کے، پاک دامنی والی زندگی گزارنے کے لیے، یہ 4 قرآنی اصول. اور پہلا اصول قرآن کا اصول جو شہوت سے بچنے کا اللہ نے بتایا کہ مومن جو ہے وہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، اور یہ آیت بے غبار ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہ کو نیچا رکھے، تو نہ محرم کی طرف نگاہ اٹھانا، چاہے انسان اپنے دل کو کیوں نہ یہ منائے کہ نہیں جی میرے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، یا جو بھی اس کا معاملہ ہے، یہ آیت بے غبار ہے. نہ محرم کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنا یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے. دوسرا اصول اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کر دیا کہ مرد اور عورت پردہ کریں. یہ بھی ہم نے پچھلی مجالس میں عرض کیا کہ پردہ عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ عورتیں پردے میں رہیں، مگر سچی بات یہ ہے کہ جس طرح عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم ہے، مردوں کو بھی اسی طرح عورتوں سے پردہ کرنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے، مردوں کو نقاب اور برقعہ پہننے کا حکم نہیں، مگر یہ کہیں نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ بے پردگی کرے اور ان کے سامنے آئے اور ان سے گلے ملے. اسلامی معاشرہ جو قرآن اور حدیث کو اپنی بنیاد بناتا ہے، وہاں مرد اور عورت الگ الگ ہوتے ہیں. چاہے تعلیمی ادارے ہوں، چاہے تقریبات ہوں، مرد کا عورت کے ساتھ پردہ ہے۔ پچھلی مجالس میں ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ جو پردے کی آیت اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی، اس کے مخاطب مرد ہے۔ فَاسْأَلُهُنَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر ان سے کوئی بات کرنی بھی ہے تو اے مردوں، تم پردوں کے پیچھے سے یہ بات کیا کرو۔ تو چار قرآنی اصول شہوت کے گناہ سے بچنے کے، اور پہلا اصول یہ کہ انسان اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، دوسرا اصول یہ کہ پردے کا اہتمام کرے، تیسرا اصول خواتین سے متعلق ہے، مگر خواتین سے متعلق یہ اصول اصل میں تو مردوں کے ہاتھ میں بھی ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے گھر کی زندگی کو سنبھالے، مرد باہر کی زندگی کو سنبھالے۔ تو کل کی مجلس میں ہم نے اس موضوع پہ گفتگو کی، معاشرے میں شہوت پھیلنے کا ذریعہ ہی یہی کہ عورت جو ہے وہ مردوں کے ساتھ، مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے راستے پہ آ جائے، اور ایسا کرنا جو ہے وہ قرآنی حکم کے خلاف ہے۔ عورتوں کو کہا گیا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا، عورت ٹھہری رہے اپنے گھر میں۔ سے مراد یہ نہیں کہ عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہے، مگر اس سے مراد یہ ہے کہ عورت کے اوپر گھر سے باہر جا کے رزق کمانے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ گھر کی زندگی کو سنبھالے۔ اور اس حوالے سے ہم نے اپنی دلائل بھی دیے، عورت کو ہر مہینے 7-8 دن تو بیماری آتی ہے، عورت نے ہی بچے کو پیدا کرنا ہے، عورت نے ہی بچے کو اپنے پیٹ میں بھی رکھنا ہے، پھر عورت نے ہی بچے کو دودھ بھی پلانا ہے، عورت مرد سے زیادہ جسمانی طور سے بھی کمزور ہے، اور آج کی سائنسی تحقیق یہ بھی بتا رہی ہے کہ عورت ذہنی طور پہ بھی انسان سے، مردوں سے زیادہ کمزور ہے۔ تو عورتوں کے اوپر یہ ذمہ داری شریعت نے نہیں ڈالی کہ وہ رزق کمائے، بلکہ شادی کا جو کانٹریکٹ مرد کے ساتھ ہوتا ہے اس میں مرد یہ ذمہ داری لیتا ہے، وہ عورت کے رزق کی، اس کی رہائش کی، اس کے کپڑے کی، اس کے کھانے کی ذمہ داری لیتا ہے۔ اور شریعت کہتی ہے کہ اگر یہ ذمہ داری مرد نہیں اٹھا پاتا تو عورت مرد سے خلع بھی لے سکتی ہے۔ تو کل کی مجلس میں ہم نے یہ بات عرض کی کہ یہ قرآنی اصول ہے، جب عورت گھر سے باہر نکل جاتی ہے تو ہر طرف شہوت ہی شہوت ہے، چاہے اسلامی معاشرہ ہو یا غیر اسلامی معاشرہ ہو، عورت گھر سے باہر نکلتی ہے فتنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ کل کے میں نے ہم نے یہ بھی عرض کیا، جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے اور یہ نعرہ کامیاب ہو جاتا ہے کہ عورت اور مرد شانہ بشانہ کھڑے ہیں، کہ کوئی رکاوٹ نہیں عورت کو مرد گھر سے باہر نکلنے میں، جس طرح مرد کام کاروبار کرتے ہیں عورت بھی اسی طرح سے کام کاروبار کرتی ہے، مرد اگر چوکی داری کر رہے ہیں تو عورت بھی چوکی داری کر رہی ہے، مرد بڑے بڑے ٹرالے چلا رہے ہیں تو عورت بھی بڑی بڑی ٹرالے چلا رہی ہے، اگر یہ معاملہ آ گیا ہے کسی معاشرے میں تو وہاں زنا عام ہو جاتا ہے۔ امریکی ایک ریسرچ کمپنی کی تحقیق ہے اور یہ آپ گوگل پہ کھول کے دیکھ سکتے ہیں، ایک امریکی نوجوان لڑکا یا لڑکی جب کالج میں جاتے ہیں اور کالج میں 4 سال گزار کر بیچلرز کی ڈگری حاصل کر کے کالج سے فارغ ہوتے ہیں، اس دوران اوسطاً 16 پارٹنرز بدلتے ہیں، اوسطاً۔ تو 16 مرتبہ یوں سمجھے کہ شادی اور 16 مرتبہ نکاح اس 4 سالات کالج کی زندگی میں ہوتی ہے۔ माशाल्लाह कोई भी उस पे एतराज करने वाला नहीं, यानी कोई उसका उस्ताद उसको ही नहीं कहेगा कि यार तूने गलत किया। उसके वालदेन को भी कोई पता, कोई छुपा के ये नहीं हो रहा होता है कि मेरे वालदेन को नहीं बताना है, तो ना पता चले कि जी मैं किसी के साथ ये ताल्लुक कर रहा हूं या कर रही हूँ। बिल्कुल भी नहीं। वालदेन पूछेंगे कि आजकल कौन है तेरी गर्लफ्रेंड, और बेटी से पूछेंगे कि आजकल तेरा बॉयफ्रेंड कौन है, यानी इसको गुनाह ही नहीं समझा जाता। तो जिन माशरों में ये नारा लग गया और लोगों के जहनों में इसकी कबूलियत आ गई कि मर्द और औरत बराबर है, वहां जिना आम हो जाता है। ये भी हमने कल की मजलिस में बताया। एक आखिरी बात रिविजिट करने के लिए कल की मजलिस को, फिर हम आज की मजलिस की तरफ, अभी आज की मजलिस शुरू होनी है, और वो ये कि हर तरफ हम ये पढ़ते भी हैं, अखबारों में भी आता है, और ये तहकीक की बात है, यूरोप अमेरिका में मगरबी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला दीन जो है वो इस्लाम है, उसमें कोई शक नहीं है, चाहे आप किसी मुसलमान से पूछ लें या काफिर से पूछ लें, मगर इसमें सबसे ज्यादा इस्लाम कबूल करने वाले जो हैं वो औरतें हैं। 10 में से 9 लोग जो इस्लाम मगरबी दुनिया में कबूल करते हैं वो औरतें होती हैं, क्योंकि ये वाली जिंदगी औरत को पसंद नहीं है। जब मर्द और औरत शाना बशाना खड़े हैं तो इसका मतलब औरत को तकलीफ में आपने डाल दिया है। वो माशरे के प्रेशर की वजह से नौकरी तो कर रही है, मगर उसके जहन में है कि मेरा बच्चा अकेला है घर पे, उसको देखने वाला कोई नहीं है, या उसको मैंने ऐसी जगह पे छोड़ दिया है जहां उसकी तरबियत सही नहीं और जहां उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा। जब औरत अपनी इस बीमारी में पीरियड्स में होती है तो औरत कहती है कि क्या मेरे सर पे ये जिम्मेदारी डाल दी कि मुझे आज भी नौकरी पे जाना पड़ रहा है। तो बच्चे को दूध जब औरत नहीं पिलाती है और किसी और के जिम्मे लगा देती है तो उस वक्त वो परेशान होती है। तो औरत इस शाना बशाना चलने वाले नारे से खुद भी खुश नहीं है। और सच्ची बात यह है कि मर्द और औरत जब शाना बशाना चलते हैं तो औरत की तबीयत जो है वो सेटल डाउन होने की है। मर्द की तबीयत ये है कि उसको अगर प्यार मोहब्बत से एक घर में चल भी रहा है ना, बीवी बच्चे भी हैं, तो भी अगर उसको कोई औरत पसंद आ गई तो उसकी तबीयत चाहती है कि जी मैं उसके साथ भी एक ताल्लुक कायम करूं। तो ये जो शाना बशाना मर्द और औरत चलने का जो नारा होता है, उसके बाद होता ये है कि मर्द खूब जिना करता है और खूब अपनी बीवी के साथ बेवफाई करता है, खुली चिट जो मिल गई है। तो औरत को ये भी यकीन नहीं होता है कि सुबह ये नौकरी पे जाएगा, शाम को मुंह काला करके घर पे आएगा, किसी तरह की किसी किस्म की वफादारी का उसको यकीन ही नहीं है। तो इसलिए मगरबी औरत बहुत उकता गई है, इसके मुकाबले में उसको इस्लाम बड़ा जबरदस्त लगता है। यदि शादी का कॉन्ट्रैक्ट ये है कि औरत नहीं कमाएगी मर्द कमाएगा, औरत घर पर बैठेगी, बच्चे संभालेगी, बच्चे पैदा करेगी, बीमार जो हर महीने हो जाती है तो उस बीमारी में भी उसको उठ के नौकरी पे नहीं सुबह सुबह जाना है, फिर उसको ये भी पता है कि जो मेरा शौहर है जो मुसलमान है वो जिना तो दूर की बात, किसी नामहरम औरत पे आंख उठाने को भी गुनाह कबीरा समझता है, तो उसको ये यकीन है कि जब शाम को घर आएगा तो ये किसी के साथ कोई जिना करके नहीं आएगा। तो खाना पीना भी वो दे रहा है, मैं आराम से घर बैठ के छुट्टी कर रही हूँ, शौहर भी अगर बाहर जा रहा है कमाने के लिए तो वो बगैर जिना किए हुए घर वापस आएगा। और फिर तीसरी सबसे बड़ी बात यह कि शरीयत कहती है कि जो शौहर ज्यादा नेक बनना चाहता है वो बीवी की ज्यादतियों को भी बर्दाश्त करे। नबी अलैहि सलातो वसलाम ने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम ली अहली, तुम में सबसे बेहतर वो जो अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छा सलूक करता है।
तो जब मगरबी औरत मुसलमान औरत को देखती है मगरब में रहते हुए, तो उसको फील होता है कि ये तो बादशाहों वाली जिंदगी गुजार रही है। तो इसलिए औरतों को इस्लाम कबूल करना आसान, वो आसान जिंदगी, खुशगवार जिंदगी की तरफ आ जाती है। तो शहवत से मुतालिक तीसरा कुरानी उसूल ये, वकरना फी बुयूती कुन्ना, औरत घर में टिकी रहे, और घर में टिकी रहती है तो शहवत वाला गुनाह कम होता है। जहां माशरे में ये नारा लग गया कि मर्द और औरत बराबर है, तो दोनों उसी तरह घर से बाहर निकले जैसे एक निकलता है, हर तरफ तबाही है। चौथा उसूल और चौथा कुरानी उसूल, और वो ये कि मर्द और औरत को अगर आपस में गुफ्तगू करनी ही पड़े तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि वला तगज़ाना बिल कौल, कि अपनी आवाज को नरम ना बनाओ, फयतमा अल्लज़ी फी कल्बी मरद, अगर औरत अपनी आवाज को नरम बनाएगी तो जिसके दिल में मर्ज है वो फिर तलब करेगा औरत की। तो औरत को हुक्म दिया, बल्कि मर्द को भी हुक्म है, औरत के साथ यूं हंसी मत, अगर गुफ्तगू करनी पड़ रही है किसी जबरदस्त किसी जरूरत के तहत तो नरम गुफ्तगू बिल्कुल ना की जाए। कई मरतबा हंसी मजाक भी नरम गुफ्तगू होती है, कई मरतबा कुछ ज्यादा हमदर्दी वाली गुफ्तगू भी होती है, तो हंसी मजाक तो नहीं हो रहा होता है मगर नरमी जरूर होती है। तो मर्द और औरत आपस में गुफ्तगू भी करते हैं तो बस अल्लाह ने सिस्टम ऐसा रख दिया है कि अट्रैक्शन बढ़ती है। तो इसलिए ये नरम गुफ्तगू मर्द भी अपनी बीवी के साथ करे और औरत भी अपने शोहर के साथ करे। कई मरतबा उल्टा हो रहा था, बाकी पूरी दुनिया से नरम गुफ्तगू हो रही थी, बस आपस में सख्ती वाली गुफ्तगू हो रही थी। आपस में मूड ऑफ होता है, बाकी सबके साथ मूड ऑन होता है। तो किसी दोस्त ने ये लतीफा सुनाया था कि आमतौर पर बीवी कोई सवाल पूछ ले तो शौहर कहता है कि तू सारा वक्त बस बातें करती रहती है, थोड़ा सा मुझे सुकून तो लेने दे। और कोई और औरत अगर कोई सवाल पूछ ले तो माशाल्लाह पूरी किताब पढ़ के सुना देता है। तो सच्ची बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया, मर्द और औरत आपस में गुफ्तगू करें, डर भी जरा भी ना। एक बड़े फकीर थे, उनसे पूछा गया जी कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरत को हुक्म दिया है कि वो नरम गुफ्तगू ना करे मर्दों के साथ, तो कितनी सख्त गुफ्तगू होनी चाहिए? हजरत ने फरमाया कि औरत मर्द के साथ जब गुफ्तगू करनी ही पड़ रही है तो फिर इतनी सख्त करे कि इस गुफ्तगू के खत्म होने पे बेसाख्ता मर्द के मुंह से निकले ला हौला वला कुव्वता इल्ला, इतनी सख्त गुफ्तगू होनी चाहिए। तो सच्ची बात यह है कि कुरान में इस शहवत से मुतालिक जबरदस्त चार कुरानी उसूल बता दिए गए। जब नरम गुफ्तगू होती है उसके बाद ही गलत काम शुरू होता है, और जिसको कोई औरत अगर दावत दे दे, मर्द तो कोशिश करते ही रहते हैं, मर्द का काम होता है गुनाह की दावत देना, औरत के ऊपर शर्म गालिब होती है। अगर औरत बेहया हो जाए फिर वो भी गुनाह की दावत दे देती है। यही से बाद में आता है कि जिस मर्द को किसी औरत ने गुनाह की दावत दी जब नरम गुफ्तगु होती है, इसके बाद हो सकती है गुनाह, इससे पहले नहीं हो सकती। सख्त गुफ्तगु के साथ गुनाह की दावत नहीं हो सकती है। तो नरम गुफ्तगु जिना का पेश खेमा है, इसलिए शरीयत ने नरम गुफ्तगु बना कर दिया। और आज अगर कोई नरम गुफ्तगु नहीं करता ना, तो आज का माशरा कहता है कि बहुत ही ज्यादा जी सख्ती है इनमें, बहुत ही ज्यादा जो है वो करख्त मिजाज है, बद मिजाज भी कहा जाता है। तो आज का माशरा कहता है कि जी अगर मर्दों में आपस में सख्त गुफ्तगू कर लो कोई मसला नहीं, मगर जब आप औरत से गुफ्तगू करें तो आपको नरमी के साथ गुफ्तगू करनी चाहिए, वरना आप सख्त मिजाज हैं, बद मिजाज हैं, खराब मिजाज हैं, या जो भी है। मगर हदीस पाक में आता है कि जिसको किसी औरत ने गुनाह की दावत दी और उसने आगे से जवाब दिया, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, नबी ने सलातो सलाम ने फरमाया कि कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे शख्स को अपने अर्श का साया देंगे जब कोई और साया नहीं। कयामत के दिन ये अल्लाह वालों की सफ में खड़ा होगा ये शख्स। तो औरत के साथ, गैर औरत के साथ नरम गुफ्तगू ना करें, अपनी बीवी के साथ नरम गुफ्तगू करें। हदीस पाक में आता है जब बीवी शोहर को मुस्कुरा कर देखती है, शोहर बीवी को मुस्कुरा कर देखता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इन दोनों को मुस्कुरा कर देखते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम से फरमाया कि जब मियाँ बीवी आपस में मिलते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें बहुत अजर देते हैं। इस हदीस को सुनकर सहाबा इकराम हैरान हो गए, अल्लाह के नबी तो अपनी शहवत को, अपनी नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा करते हैं इस तरह से, इस पे भी अजर है। तो नबी ने सलाम ने फरमाया कि अगर तुम ये जरूरत अपनी बीवी से पूरी ना करते तो फिर तुम जिना से पूरी करते, तो जिना करने पे गुनाह मिलता है या नहीं? तो नबी बिल्कुल गुनाह मिलता है, फरमाया तो निकाह के जरिए से ये अमल करते हैं तो उस पर सवाब। तो जिसने अपनी फोकस को, अपनी इस फितरी शहवत के तकाजे को हलाल तरीके से पूरा किया, वो अल्लाह के औलिया में शामिल हो गया। सच्ची बात यह है। और जिसने इस हलाल तरीके से पूरा करने के लिए हर हराम चैनल को बंद किया, ये पक्की बात है कि कयामत के दिन औलिया के साथ खड़ा होगा। अगर आज के जमाने में ऐसा करना थोड़ा मुश्किल हो गया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इन उसूलों पे, इन पुरानी उसूलों पे अमल नसीब फरमाए। और आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ कर लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़ عملا متقبلا ولسانا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه برحمتك يا أرحم الراحمين. छोटा सा ऐलान है, चल बुध के दिन दोपहर 3:15 बजे खवातीन का माहाना बयान यहाँ हमारी इस खानकाह पे, इस बिल्डिंग में है, R18 खयाबान रिजवान डिफेंस फेस से। बुध के दिन दोपहर 3:15 बजे हर महीने ये एक बयान होता है, आमतौर पर आखिर महीने के आखिरी बुध पे होता है। तो क्योंकि ये महीने का आखिरी बुध होगा तो जरूर अपने घर की खवातीन को इस बयान में जरूर भेजें। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।